अरुणिमा धीरे से दरवाज़ा खोलकर अस्पताल के वार्ड में दाखिल हुई, जहां उसके पिताजी को रखा गया था। उसने देखा, उसके पिताजी को होश आ गया था और वे बिस्तर पर बैठे हुए थे। उनके नाक पर अभी भी ऑक्सीजन मास्क था, लेकिन अब उनकी आंखें खुली हुई थीं। अपने पिता को होश में आया देखकर अरुणिमा बहुत ज़्यादा खुश हुई। हालांकि आखिरी मुलाकात के बाद उसने सोचा भी नहीं था कि वो दोबारा यहाँ आ पाएगी। या तो आस्तिक उसे नहीं आने देता या फिर उसकी माँ उसे उसके पिता से मिलने नहीं देती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने पिता को देखकर वो बहुत खुश हुई और किसी छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरा उठी। बृजेश जी ने जब देखा कि अरुणिमा दरवाजे पर खड़ी है तो उनके चेहरे पर हल्की सी सुकून भरी मुस्कान आ गई। न जाने कब से वे अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। उन्होंने धीरे से अपने हाथ उठाकर अरुणिमा को अपने पास आने का इशारा किया। पापा, अरुणिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा एकदम रोने जैसा हो गया था। वो अपने पापा के पास गई और ठीक उनके सामने स्टूल पर बैठ गई। आप ठीक तो है ना? बृजेश जी धीरे से अपना हाथ उठाकर ऑक्सीजन मास्क को नीचे गले में टांग लेते हैं और मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखकर हल्का सा सिर हिला देते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और अरुणिमा की माँ आशा जी कमरे में दाखिल होती हैं। अरुणिमा को देखकर वे चौंक जाती हैं और हैरानी से कहती हैं, अरुणिमा तुम यहाँ? अरुणिमा अपनी माँ को देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी माँ को देखते ही उसे पिछली मुलाकात याद आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से अपने पापा की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो अपनी माँ से कोई बात नहीं करना चाहती थी। आशा जी अरुणिमा के पास आते हुए बोली, अरुणिमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आस्तिक ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? अरुणिमा चौंक कर आशा जी की तरफ देखती है और बृजेश जी भी चौंक जाते हैं। उन्होंने आशा जी से सवाल किया, ये तुम क्या कह रही हो? आस्तिक क्यों रोकेगा अरुणिमा को मुझसे मिलने से? आशा जी जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, नहीं मेरा मतलब था कि आस्तिक नहीं आया क्या तुम्हारे साथ? तुम अकेली आई हो अपने पापा से मिलने? अरुणिमा अपनी माँ से बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, आस्तिक आए हैं, डॉक्टर के केबिन में हैं, उनसे बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पापा से मिलने आई हूँ। पापा, पिछली बार जब मैं आई थी तब आप होश में नहीं थे, इसलिए आपसे कोई बात नहीं कर पाई, लेकिन अब आप होश में आ गए हैं। देखिए कितने कमज़ोर हो गए हैं आप, और आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? अब ध्यान से ड्राइविंग नहीं कर रहे थे क्या? अरुणिमा की डांट सुनकर बृजेश जी मुस्कुरा उठे। वे यही चीज़ तो मिस कर रहे थे। उन्होंने कहा, ऐसी बात नहीं आरू, मैं ध्यान से ही ड्राइविंग कर रहा था, पता नहीं कहाँ से वो गाड़ी आ गई। चलो छोड़ो ये सब बातें, तो मुझसे मिलने पहले भी आई थी? आशा, तुमने बताया क्यों नहीं कि अरुणिमा पहले भी आई थी? अरुणिमा चौंक जाती है और अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। पिछली मुलाकात की बात आशा जी ने बृजेश जी को नहीं बताई थी। आशा जी ने एक नज़र अरुणिमा को देखा और बोली, बताने का अभी क्या फ़ायदा था? आप होश में थोड़ी ना थे। अब जब आप होश में आ गए हैं तो कीजिए अपनी बेटी से बात, मैं कौन सा मना कर रही हूँ? बृजेश जी ने अरुणिमा को देखा। अरुणिमा धीरे से अपने पिता का हाथ थामते हुए बोली, पापा आप ठीक तो है ना? बृजेश जी एक नज़र अरुणिमा को गौर से देखने लगे। उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की सादगी को उन्होंने जैसे फिर से महसूस किया। उन्होंने धीरे से कहा, मेरी छोड़ो अरु, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। अरुणिमा एक पल के लिए घबरा गई और आशा जी की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे पर भी चिंता के भाव आ गए थे। अरुणिमा ने जल्दी से कहा, हाँ पापा मैं ठीक हूँ। आप शायद मुझे काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी आप मेरी फिक्र छोड़िए और आराम कीजिए। लेकिन बृजेश जी शायद अपनी बेटी को बेहतर जानते थे। उन्होंने अरुणिमा की आंखों में छिपी उदासी पहचान ली थी। अरुणिमा अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, पापा आप पानी पियेंगे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लेकिन इससे पहले कि अरुणिमा खड़ी हो पाती, बृजेश जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरुणिमा चौंक गई, यहाँ तक कि आशा जी भी हैरान रह गईं। बृजेश जी अरुणिमा को देखते हुए बोले, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे सवालों के जवाब दो। अरु तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? क्या तुम ठीक नहीं हो? सच बताना, आस्तिक तुम्हारे साथ अच्छे से पेश तो आ रहा है ना? अरुणिमा डर गई और बृजेश जी की ओर देखने लगी। आशा जी का चेहरा तो पूरा पीला पड़ गया था, लेकिन अरुणिमा इतने समय से आस्तिक के टॉर्चर को झेलती झेलते समझ गई थी कि किस समय उसे क्या कहना है। इसलिए उसने जल्दी से अपने चेहरे के भाव बदले और बोली, पापा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आस्तिक मेरे साथ ठीक से पेश नहीं आता होगा? और ये जो मेरे चेहरे पर परेशानी दिख रही है वो आस्तिक की वजह से नहीं है, बल्कि आपकी वजह से है। मैं आपके लिए परेशान हूँ पापा, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। और हाँ,
आस्तिक मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्होंने मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। और ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि उनका इतना बड़ा बिजनेस है, इतने सारे काम है, लेकिन उन सबको छोड़कर भी यहाँ मेरे साथ सिर्फ आपके लिए हैं। और पता है, उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते मैं वापस मुंबई नहीं जा रही हूँ। अरुणिमा की बात सुनकर ब्रजेश जी को थोड़ी राहत मिली और आशा जी ने भी सुकून की सांस ली। तभी अरुणिमा के फोन का नोटिफिकेशन बजता है। उसने देखा कि आस्तिक का मैसेज था जिसमें लिखा था कि वो पार्किंग में उसका इंतजार कर रहा है। अरुणिमा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इस वक्त वो अपने पिता के साथ थी और उसने पहले ही बता दिया था कि आस्तिक भी साथ आया है। ऐसे में अब वो क्या करे, क्योंकि अगर वो अचानक यहाँ से चली गई तो उसके पिता सवाल जरूर करेंगे कि अगर आस्तिक यहाँ तक आया है तो उनसे मिलने क्यों नहीं आया। लेकिन अरुणिमा जानती थी कि वो अपने पिता को ज्यादा टेंशन नहीं दे सकती क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अरुणिमा खड़ी हुई और जल्दी से बोली, पापा मुझे अब जाना होगा, दरअसल आस्तिक को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, लेकिन मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगी। और आस्तिक तो आपसे मिलने ही वाले थे लेकिन शायद कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए मुझे अभी जाना होगा, पर मैं वादा करती हूँ अगली बार हम दोनों आपसे मिलने आएंगे। अरुणिमा ने आगे बढ़कर अपने पिता के हाथों को चूमा और उन्हें देखा, पर ब्रजेश जी अपने बेटे के हर व्यवहार को बहुत ध्यान से नोटिस कर रहे थे। अरुणिमा का जल्दबाजी में आना और उससे भी ज्यादा जल्दबाजी में जाना, ये देखकर ब्रजेश जी को कुछ खटका लगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बहुत अच्छे से नोटिस किया कि अरुणिमा ने सिर्फ उनसे बात की थी, आशा जी की तरफ ना तो उसने देखा और ना ही उनसे कोई बात की। अरुणिमा आस्तिक के साथ वापस हवेली लौट आई। क्योंकि रात हो चुकी थी तो लावण्या भी इस वक्त सो चुकी थी और हमेशा की तरह आस्तिक ने आज रात भी अरुणिमा पर अपना कहर बरसाया। ना तो आस्तिक ने अरुणिमा के पिता के बारे में उससे कुछ पूछा और ना ही उनकी तबीयत के बारे में कोई खबर ली। अरुणिमा ने भी आस्तिक को कुछ नहीं बताया कि उसके पिता अब कैसे हैं, क्योंकि डॉक्टर निशा के मामले में वो पहले ही एक गलती कर चुकी थी जिसका अंजाम लगभग निशा की जान ले सकता था। इसलिए अरुणिमा ने अब तय कर लिया था कि कुछ भी करने या कहने से पहले वो ये सोचेगी कि कहीं इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा। 3 दिन बाद आस्तिक किसी जरूरी काम से जल्दी घर से निकल चुका था। अरुणिमा अकेली थी और इस वक्त किशमिश के साथ ब्रेकफास्ट बना रही थी। हाँ, किस्मी ने अपना नाम बदलकर किशमिश रख लिया था, लेकिन कागजों पर नाम बदलने से क्या होता है, अभी भी सबकी जुबान पर उसका पुराना नाम किस्मी ही था। यहाँ तक कि अरुणिमा भी उसे किस्मी कहकर ही बुलाती थी।
अरुणिमा जल्दी जल्दी हल्का और सिंपल ब्रेकफास्ट बना रही थी और उसे किस्मी के जरिए अस्पताल में अपने पापा के पास भिजवाना चाहती थी। क्योंकि आस्तिक यहाँ नहीं था तो उसकी परमिशन के बिना वो अस्पताल नहीं जा सकती थी, वरना वो ये खाना खुद अपने हाथों से अपने पापा को खिलाना चाहती। लेकिन फिलहाल वो नहीं जा सकती तो कम से कम उसके हाथों का बना खाना तो अस्पताल जा ही सकता था। इससे पहले भी उसने किस्मी और ड्राइवर के हाथों अपने पापा के लिए खाना भिजवाया था और बदले में उसे अपने पापा से थैंक यू का एक नोट भी मिला था। अरुणिमा तेजी से ब्रेकफास्ट बना रही थी तभी लावण्या अपने नाइट सूट में अंदर आई और उसे देखते हुए बोली, मुझे आमलेट और वेज सैंडविच चाहिए। अरुणिमा, जो अपने पापा का ब्रेकफास्ट पैक कर रही थी और किस्मी उसकी मदद कर रही थी, दोनों अचानक से चौंक गईं और हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा जहां लावण्या एटीट्यूड के साथ खड़ी होकर उसे ऑर्डर दे रही थी। एक्सक्यूज मी, अरुणिमा ने हैरानी से पूछा तो लावण्या अपने एटीट्यूड के साथ बोली, ऐसे क्या देख रही हो, सुनाई नहीं दिया क्या, मैंने तुमसे कहा कि मुझे आमलेट और वेज सैंडविच चाहिए। अगर तुम्हें आमलेट और वेज सैंडविच चाहिए तो जाकर खुद बना लो, अरुणिमा ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। उसकी ये बात सुनकर किस्मी ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, लेकिन लावण्या गुस्से से भड़क उठी। वो तेज कदमों से अरुणिमा के पास आई और उंगली दिखाते हुए बोली, बहुत एटीट्यूड है ना तम में, लेकिन ये एटीट्यूड बस कुछ ही दिनों का है। जिस दिन मैं आस्तिक के बच्चे को जन्म दूंगी ना, उस दिन तुम्हारा ये एटीट्यूड धरा का धरा रह जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम अभी तक प्रेग्नेंट हुई नहीं हो, पहले प्रेग्नेंट हो जाओ फिर बच्चे को जन्म देने की बात करना, अरुणिमा ने ठंडे लहजे में कहा, और प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहले तुम्हें मेरे पति के साथ सोना होगा। जैसे ही अरुणिमा ने ये कहा, लावण्या का चेहरा दंग रह गया। वो हैरानी और गुस्से से उसे देखने लगी, जबकि किस्मी ने माहौल को भांपते हुए जल्दी से टिफ़िन उठाया और बोली, मैडम मैं ये टिफ़िन अस्पताल लेकर जाती हूँ। किस्मी जल्दी से वहां से निकल गई, लेकिन अरुणिमा अभी भी गुस्से में लावण्या को घूर रही थी तो लावण्या के चेहरे पर भी गुस्से के भाव थे। उसने तमतमाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके की बात करने की, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अरुणिमा ने अपने दोनों हाथ सामने बांधे और एक आईब्रो उठाकर उसे जवाब दिया। लावण्या गुस्से में बोली, हाँ जानती हूँ तुम कौन हो, तुम एक नौकरानी हो, इससे ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। अरुणिमा के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उसने ऊपर से नीचे तक लावण्या को घूरते हुए कहा, मेरे बारे में तो तुमने अंदाजा लगा लिया कि मैं कौन हूँ, पर तुम्हारा क्या, तुम्हें खुद पता है कि तुम कौन हो? अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम इस घर में सिर्फ एक मेहमान हो और सरोगेसी के लिए एक उम्मीदवार हो, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरुणिमा आगे बढ़ी और ठहर कर बोली, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे पति के साथ सोना होगा और उसके लिए आस्तिक का तुम्हारी तरफ आकर्षित होना जरूरी है, लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ वो तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब तुम खुद ही देख लो, 3 दिन से तुम भी देख रही होगी, आस्तिक जब देखो तब मुझे ही अपने करीब रखता है,
सुबह शाम दिन रात जब उसका मूड करता है वो मुझे कमरे में ले जाता है। मैं तो यहाँ फिर भी साड़ी पहनकर रहती हूँ, लेकिन तुम तो इतने हॉट और रिवीलिंग कपड़े पहनती हो, फिर भी आज तक तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर लावण्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीखते हुए बोली, दो टके की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आस्तिक को अभी तुम में इंटरेस्ट है, लेकिन देखना जब वो मेरे पास आएगा तो तुम्हारा ये रूप रंग सब धरा का धरा रह जाएगा। वैसे भी पहले भी वो मेरे साथ कॉलेज के दिनों में लव कर चुका है, तो दोबारा करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तब मैं और अब मैं, इसमें बहुत फर्क है मिस लावण्या, अरुणिमा ने मुस्कुरा कर कहा। तब तुम दोनों जवानी की दहलीज पर थे और एक दूसरे को सिर्फ संतुष्ट कर रहे थे, लेकिन अब आस्तिक मेरा पति है और उसे फिजिकल सेटिस्फैक्शन से ज्यादा मन का सुकून चाहिए, जो उसे कहीं और नहीं सिर्फ मेरे पास मिलता है। वो लावण्या की आंखों में देखकर बोली, इसलिए इस घर में मेरी और तुम्हारी पहचान बहुत अलग है। मैं मिसेज अरुणिमा आस्तिक रायचंद हूँ और तुम एक बाजारू औरत जो चंद पैसों के लिए किसी के भी पति के साथ सो जाती है। मैं तो फिर भी इस घर का काम कर रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। महलों में खूबसूरत दासियां तो बहुत होती हैं, लेकिन रानी केवल एक होती है, क्योंकि रानी बनने के लिए अदाएं नहीं मर्यादाएं जरूरी होती हैं।